पृष्ठ संख्या 37। नाटकों में भी नहीं, जैसे कि लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में मिल जाते हैं, और न शिल्प का वह दोहराव ही मिलता है जैसा कि प्रसाद के नाटकों में है, बल्कि उनका सारा ध्यान रचना के आंतरिक शिल्प की खोज पर केंद्रित है। अभिव्यक्ति के खतरे राकेश ने नहीं उठाए हैं, ना फार्म को, शिल्प को एकदम तोड़ा ही है। हाँ, बदला जरूर है, लेकिन बदलने की इच्छा से नहीं, रचना की अनिवार्यता से। पूरी रचना में अंतर्ग्रथन का ही महत्व अधिक है, आरोपित दर्शन, विचारों या मूल्यों का नहीं। जहाँ कहीं राकेश का स्वभावगत अंतर विरोध रास्ते में आया है, वहाँ यह अंतर ग्रथन कुछ शिथिल पड़ गया हो, यह और बात है, लेकिन दृष्टि उनकी यही है। अनुभूति के आवेश से पैदा होने वाली नई और सहज अभिव्यक्ति, सहज शिल्प ही उनके साहित्य का सौंदर्य है। अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों को सामाजिक प्रक्रियाएं मानते हुए भी वह अभिव्यक्ति को अनुभूति का ही अनिवार्य परिणाम मानते हैं। इसीलिए अभिव्यक्ति अनिवार्य होते हुए भी नियंत्रण की मर्यादा की अपेक्षा रखती है। लेखक की सारी कला उस नियंत्रण में ही है, लेकिन फिर भी अनुभूति की पूरी तीव्रता में अभिव्यक्ति ही कला की सार्थकता का प्रमाण है। जाहिर है कि अभिव्यक्ति का यह नियंत्रण, कलागत मर्यादा, लेखक की अनुभूति की गहराई और व्यापकता से ही जन्म लेगी। राकेश के सभी नाटकों से यह सत्य उद्घाटित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। राकेश कहीं भी बहुत व्यक्तिक या प्राइवेट नहीं है। अपने विचारों में, चिंतन में, दृष्टि में, अपने आत्मकथनों में, रचनाओं में, सभी जगह बहुत स्पष्ट है। यहाँ तक कि अपनी अस्थिरता, अनिश्चय और अंतर विरोधों में भी है। यूं भी उनके लिए नरों व कुंजरों व में जिंदगी जीना हमेशा असंभव ही रहा। यही नहीं, उनकी आंतरिकता, आकुलता ने भी, असंतोष की प्रवृत्ति ने भी उनके साहित्य को एक रस नहीं होने दिया है। कहानी, उपन्यास, नाटकों, सभी में उनकी रचनात्मक शक्ति का निरंतर विकास लक्षित किया जा सकता है। अधिक से अधिक अर्थयुक्त, संदर्भ से जुड़ा, सूक्ष्म संवेदनाओं से युक्त और भाषा को तराशता हुआ, शब्दों में अर्थ गूंज पैदा करता हुआ। यह सही है कि राकेश ने कई विधाओं में अपनी रचना शक्ति को, कला प्रतिभा को आजमाया। सबसे पहले वह अपनी कहानियों से जाने पहचाने गए। नाटक उन्होंने बहुत बाद में लिखे, लेकिन दृश्य तत्व शब्दों से ही जन्मने वाला दृश्य तत्व उनमें आरंभ से ही था, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत डायरी के पन्नों में स्थान स्थान पर इतने नाटकीय बिंब और प्रयोग या चित्र हैं, मनः स्थिति के सारे तनाव, प्रश्न, उलझन, सोच को बड़े संकेत से प्रस्तुत करने वाले की कहीं कहीं वे उनके नाटकों से भी अधिक व्यंजक, सार्थक और प्रभावपूर्ण लगते हैं। यानी यह चेतना उनमें थी ही कि शब्द और बिंब के सृजनात्मक प्रयोग से सजीव दृश्यात्मकता ला सके, और विविध क्रियाएं, भाव भंगिमाएं भी, जिससे जाहिर हो जाता है कि नाटक जैसी विधा के अनुकूल मानसिकता, मस्तिष्क और भाषा अविकार उनके पास था। वैसे भी अपने आरंभिक जीवन से ही अभिनय की रुचि तो थी ही। 1945 में अपने निर्देशन में उन्होंने वेणी संहार नाटक का मंचन भी कराया था। आषाढ़ का एक दिन ने उन्हें हिंदी के महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित किया। तब से लेकर 13-14 वर्ष के समय में, यद्यपि उन्होंने बहुत कम नाटक लिखे, जबकि नाटक की एक ऐसी भूमि उनके ही नाटक से तैयार हो गई थी कि उस समय नाट्य लेखन की प्रेरणा के अवसर अधिक थे। पृष्ठ संख्या 38। लेकिन कुछ तो अपने स्वभाव की जटिलता के कारण, कुछ व्यक्तिगत जीवन के दर्द और संघर्ष के कारण लिखने का मूड बनता ही नहीं था, या जो कहना चाहते थे कहना मुश्किल या असंभव लगता था, क्योंकि अक्सर उन्हें लगा है कि सारी सुंदरता और सजीवता को अपने में पूरा भर लें, या सब तरफ के विस्तार को एक क्षण ही पूरा जी सकें, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता, नहीं हुआ। वह जो चाहा था व्यक्त करना नहीं हो पाया, जो बात अचानक मन को छू गई थी वह नहीं है। यह एक ऐसी अंदरूनी व्यवस्था रही है जो लेखन प्रक्रिया को जटिल बनाती रहती है। अक्सर कुछ न लिख पाने की थकान और उलझन ने राकेश को बेचैन किया है, तभी शायद वह कहते हैं वे क्षण, जबकि आदमी कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं सोच पाता, कुछ भी नहीं चाह पाता, जबकि अपना आप रुका सा महसूस होता है, बहते पानी में रहकर भी घने सेवार में उलझा सा, जबकि अपनी शक्तियों पर अपना वश नहीं होता, जबकि गति नहीं होती, बहाव नहीं होता, केवल एक कपकपी होती है, बेबस कपकपी। शायद यह एक बहुत बड़ा कारण है कि उनके नाटकों के रचना काल में अंतराल भी ज्यादा है और उन नाटकों की संख्या भी बहुत कम है। एक दूसरा कारण भी है, और वह है नाटक और रंगमंच के प्रति बहुत अधिक सतर्क दृष्टि, जागरूक मन स्थिति, नाटक में बहुत इन्वॉल्व होना। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि उनकी कल्पना शक्ति में या सृजनात्मक चेतना में कोई कमी थी, क्योंकि उसका प्रमाण तो उनके नाटक स्वयं हैं, जिनमें उनकी चिंतन प्रक्रिया को पहचानना मुश्किल नहीं है। भविष्य के प्रति निरंतर दृष्टि रखने की और उसे अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाकर विशिष्ट वर्ग से सामान्य जन समूह की ओर लाने की कोशिश वह बराबर कर रहे थे। सिद्धांत भी वह यह मानते थे कि अच्छे साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए उसका बहुत व्यापक होना, सामान्य जन जीवन के विविध पहलुओं को छूना आवश्यक है। हालांकि अभी उनके नाटक सामान्य जन जीवन की संवेदनाओं से जुड़ नहीं सके थे, लेकिन साथ ही उनके नाटक विशिष्ट और व्यक्तिगत दायरे से बंधे हुए भी नहीं हैं। उनके नए नाट्य प्रयोग इस माने में आश्वस्त करते हैं कि उनका नाटककार अपनी सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने और उसके लिए कुछ अधिक सार्थक माध्यम खोजने के लिए बेचैन था। हो सकता है इस खोज और बेचैनी ने भी उनके नाटकों के रचनाकाल में इतना लंबा अंतराल रखा हो। यहाँ यह कहना भी आवश्यक होगा कि राकेश के ये तीनों पूर्ण नाटक, ब्रैकेट में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस आधे अधूरे, ब्रैकेट क्लोज, बहुत बड़ी सृजनात्मक उपलब्धि है, यह बहुत महान नाटक है, ऐसा नहीं है, ऐसा उनके बड़े से बड़े समर्थकों ने भी नहीं माना है, लेकिन इन नाटकों और उनके नाटककार का हिंदी नाटक के इतिहास क्रम में निश्चित रूप से बहुत महत्व है। संदर्भ: एक, सारिका, मार्च 73, व्यक्तिगत डायरी, पृष्ठ संख्या 86।